आगे सूरतुल हुमाजा की तरफ चलते हैं। सूरतुल हुमाजा, अब आपने ये पढ़ लिया पिछली सूरत में, ये पैगाम आपको मिल गया कि जिंदगी कीमती है, अल्लाह की तरफ से ये जो जिंदगी के दिन, लम्हे, महीने, साल मिले हुए हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, इतने कि इनमें हर एक लम्हे की हिफाजत की जरूरत है। जन्नत जैसी जगह पाने के लिए ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, तो कहाँ ये कि हम इसको फालतू कामों में जाया कर दें। ऑलरेडी हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है जो निकले जा रहा है हाथ से, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पे जिक्र है कि जो इस खसारे को डबल करने वाले हैं, जो ये चार कामों में रुकावट बनने वाले हैं, क्योंकि उनके टाइम जो है वो इन चीजों में गुजर रहा है, और उनका टाइम बजाय इसके कि उनमें गुजरता जो सूरतुल असर में बातें हैं, ठीक है, उनका टाइम किसी और ही एक्टिविटीज में जा रहा है। तो टाइम की एक तो हमें कदरों कीमत पता चली, और दूसरा टाइम किन चीजों में गुजारना है ये पता चला। इस वजह से आप सल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना किया, क्योंकि मौत आ गई, हमारा सरमाया खत्म हो जाएगा, फिर कैसे जन्नत के घर के लिए आमाल करेंगे। तो इस जिंदगी को बेकार ना समझे, ये बड़ी कीमती शय है, इसकी ना कदरी ना करें, खुदकुशी कोई ना करे, जिंदगी से ना उकताएं, क्योंकि ये एक अजीम नेमत है। इन औकात को बेकार ना जाने, इन्हीं से जन्नत कमानी है, और ये बहुत थोड़ी है जो हमें मिली है जन्नत कमाने के लिए। इसीलिए आपसे सर हमने फरमाया ना, जन्नत का चाहने वाला, मैंने जन्नत के चाहने वाले को सोते नहीं देखा। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सोता ही नहीं, मतलब ये कि यानी वो कभी गाफिल नहीं होता, कभी गाफिल नहीं होता, वो कभी बेकार मशगलों में नहीं लगा रहता, सोया पड़ा रहे, उसको परवाह ही नहीं है, जिंदगी के लम्हे गुजरते जा रहे हैं, सरमाया जाया होता जा रहा है, वो जी सोया पड़ा। सोने से मतलब ये होता ना कि तुम सोए पड़े हो, तुम्हें तो कोई होश ही नहीं, यानी होश करो, ये जिंदगी का सरमाया जा रहा है, इसको किधर खर्च करना है, इसकी हिफाजत करो, इसको प्लान आउट करो, इसके अंदर ही हमने जन्नत कमानी है। तो जिसको ये एहसास हो गया, उसकी जिंदगी में बेकार लम्हात कहीं नहीं होंगे कि उसको इन चीजों का टाइम मिले जो यहाँ पर बयान हुई है, और सारी इंटरलिंक्ड है ना ये सूरतें। तो देखते हैं सूरतुल हुमाजा, सूरतुल हुमाजा इसका जो नाम है सूरतुल हुमाजा, यही सबसे मशहूर नाम है, मगर इसके अलावा बुखारी में इसका नाम वैलुल लिकुल्लि हुमजतिल लुमजा भी है, और इसका नाम सूरतुल हुतामा भी है, क्योंकि इसमें दो दफा हुतामा की बात आई, और आखिरी की जो आयात है वो तो सारी हुतामा को डिफाइन कर रही है। तो इस सूरत में आखिरी दफा आप देखेंगे जहन्नुम की इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन, और बहुत शदीद डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद आप कुरान पाक के इख्तिताम तक आप ये नहीं देखेंगे, तो इस वजह से भी बहुत सख्त है, क्योंकि आखिरी दफा ये जहन्नुम की आग की बातें आएंगी। और ये मक्की सूरत है, हिजरत से पहले नाजिल हुई मुख्तसर सूरत है। इसका सबब नजूल भी बयान किया जाता है कि बाज़ सरदारा ने कुरैश, जैसे उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा वगैरह, ये जो थे मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, चालबाजियां करते थे, हकारत आमेज सलूक करते थे, साजिशें करते थे, इस तरह के प्रोपोगंडास करते थे मुसलमानों के खिलाफ, तो ये सूरत नाजिल हुई। मगर ये सूरत सिर्फ उनके लिए नहीं है। कैसे हम ये कह सकते हैं, वो हम सूरत में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, वैल है किसके लिए, लिए कुल्ली हार। अब इससे पता चला ये सरदाराने कुरैश जो काफिर थे उनके लिए सिर्फ नहीं है, हार कौन, जो हुमज़ा है और लुमज़ा है। अब इन जराइम के साथ, बहुत बड़े ये गुनाह हैं जिनके साथ ये सूरत स्टार्ट हुई, और हुमाजा लुमाजा ये राइमिंग है, होतामा और मोकादा जो एंड में है वो इनके साथ भी राइम करता है, यानी ये कसूर है और इनकी सजा भी इनके जैसी ही है। आप देखें पीछे से, आप अगर आए तो सूरह तकासुर में क्या था कि इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, गाफिल है, क्योंकि वो और कसरत चाहता है अपने लिए, और मिले वो कोई भी चीज़ है, वो सारी जिंदगी इसमें गुजर जाती है ताकि वो कब्र तक पहुंच जाता है, मरते दम तक, यानी इसी विशेष साइकिल में लगा रहता है। अगर मरने के बाद होश आया भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए सूरह असर में ये बता दिया गया अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, तुम्हारा खसारा है, वक्त का गुजरना तुम्हारा खसारा है, तुम्हारा नुकसान है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। असीर कहते हैं निचोड़ने को, वक्त नुचड़ रहा है तुम्हारे हाथों से, स्क्वीज हो रहा है, अब इसको बेस्ट यूटिलाइज कर लो और इस मैसेज को समझ लो कि तुम्हें क्या करना है अगर तुमने अपने खसारे को नफे में बदलना है। वो उस सूरत का थीम था ना। अब यहां पर क्या बता दिया गया, वो वजह बयान की गई जो खसारे में इंसान को डालती है, मैंने आपको बताया डबल खसारा कर देती, पीछे भी चार काम थे यहां पे भी चार काम है, तो जो इंसान को खसारे में डालते हैं, और पीछे बताया ना तवासो बिस सबर, जब सबर ही नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये काम होते हैं जो इस सूरत में बताए गए। और जो इंसान इन कामों में पड़ता है, आगे भी आएगा, हुमाजा लुमाजा और माल को जमा करना और उसको गिनना, वो बस इसी चक्कर में फंस जाता है और जिंदगी इसी में गुजर जाती है, वो असल मकसद से गाफिल हो जाता है और जहन्नुम में एंड अप हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सूरतों में रब्त भी है, और उस इससे आप समझ भी सकते हैं कि आपने क्या काम करने थे और क्या काम नहीं करने। अब यहाँ पे वईल के साथ बात हुई, वईल क्या है, सबसे पहली बात की कि ये बद्दुआया कलमा है, नंबर वन, ये बद्दुआया कलमा यानी इसमें क्या बद्दुआ है, हलाकत की, तबाही की, बर्बादी की, सख्त सजा की और अजाब की। नंबर टू, उलमा कहते हैं कि ये जहन्नुम की एक वादी है, और ये वादी इतनी शदीद है, इस कदर गर्म है, इसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है, और जहां पे जहन्नमियों का खून और पीप जमा होता है और वो फिर इन लोगों को पिलाया जाएगा। आप देख रहे हैं इससे पहले भी हमने इसी पारे में एक सूरत वईल से स्टार्ट होती भी पड़ी थी, वो क्या थी, वईलुल लिल मुतफिफीन, वेल है मुतफिफीन के लिए, वहां पे हमने बहुत सारी नाप तोल में कमी बेशी और लोगों के हकूक में कमी बेशी करने वाला, वो जो देते वक्त तो चाहता है कि मैं कम दूं लेकिन लेते वक्त मुझे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए या ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे हक से भी ज्यादा मिलना चाहिए, और देते वक्त डंडी मार देता है और थोड़ा कम करके देता है, उसके लिए वैल का कहा गया था। और उसमें एक ये भी बात है कि वो इंसान, उलमा कहते हैं वो इंसान जो हक जब सामने आए और उसकी मर्जी का हो तब तो मान जाए, लेकिन जब मर्जी का ना हो तो इनकार कर दे, उन्होंने कहा ये भी मुतफिफीन है, उसके लिए भी वईल है, और वो कईल से भी ज्यादा सख्त है कि कोई इंसान ये करे, हमारी मर्जी की बात हो तब तो हम बहुत मान लें, जब हम वालदेन हैं तो वालदेन की फरमाबरदारी पे लेक्चर हमें बड़ा ही पसंद आएगा, बच्चे सुने ना, अच्छा ये सुन, इनको सुनना चाहिए, लेकिन जहां पे हमारी कोई मर्जी की चीज के खिलाफ है, चीज हमारी ख्वाहिश के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे अगर हम बेपर्द फिरने वाले पर्दे पे लेक्चर आ जाए तो हमें फिर बड़ा ही अनकंफर्टेबल होगा। तो अपनी मर्जियों की चीजें लेना और जो उसके ऊपर बहुत राजी होना, और जो मर्जी का नहीं है, हक है लेकिन उसको ना लेना, ये भी मुतफिफीन में शामिल हैं लोग। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वईल है ऐसे लोगों के लिए, और यहाँ पे अल वईल नहीं है, वईलुन है, वईलुन जब होगा ना तनवीन जब आती है तो तनवीन ले तादीम होती है, यानी किसी चीज को ग्रैंड बना देती है, यानी बहुत सख्त वईल है, बहुत सख्त बात है। बहुत सख्त वईद है, और ये कोई इंसान नहीं कह रहा कि तबाही हो, बर्बादी हो। इंसान कहे तो फिर भी इतनी बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। ये तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि वईद है। तो ये सोचें कि फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से कर्स है उसके लिए, तो उसका गुस्सा कितना ज्यादा है ऐसे बंदे के लिए, और ये कितनी सख्त वार्निंग है उसके लिए, और कितने अल्लाह ताला को नापसंद है ये बातें। लेकिन कुल्ली से पता चला लिए हार, हार उसके लिए, चाहे वो काफिर है चाहे वो मुसलमान है, ये हर एक के लिए। जो कौन है, हो मजा और लू मजा, देखिए यहाँ पे भी नकेरा, और इसके अंदर एग्जेजुरेशन है, इसके अंदर एग्जेजुरेशन भी है, ताकीद भी है, और इन दो अल्फाज के बारे में उलमा कहते हैं कि ये वो दो अल्फाज हैं जिनका एक ही मतलब है, एक मतलब, लेकिन जब दोनों अल्फाज एक साथ आ जाए ना, अगर हुमाजा सिर्फ कहा जाता, वैलुन लिकुल्ली हुमाजा सिर्फ कहा जाता, तो फिर लुमाजा उसमें शामिल था, लेकिन, और अगर सिर्फ लुमाजा कहा जाता तो हुमाजा शामिल था, लेकिन जब दोनों आ गए तो अब दोनों के अलग अलग माने होंगे। वैसे तो इनका माना गीबत करने वाला, ऐब चुनने वाला, बोहतान बांधने वाला, लोगों को रेडिक्यूल करने वाला, मजाक उनका उड़ाने वाला, तहकीर करने वाला, गॉसिप्स करने वाला, इंसल्ट्स करने वाला, लोगों को टॉन्ट करता है, तंज करता है, और ये हैबिचुअल है, उसकी आदत है, वो ये करता रहता है, ये होमाज़ा है, हमाज नहीं है, सिर्फ होमाज यानी वर्ब नहीं है, सिर्फ होमाज़ा है, यानी अब इसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, यानी कि सिर्फ एक दफा किया, कभी गुस्सा आ गया तो कर लिया, या कभी जज्बात में आके कर लिया, मुसलसल करता है, फौला के वजन पे है, जिसमें कसरत होती है, मुबालगा होता है, शिद्दत होती है। तो ये तीनों माने इसके अंदर आप समझेंगे, कसरत भी कि हर वक्त करता रहता है, और बहुत ज्यादा करता है, शिद्दत के साथ करता है, यानी बहुत ज्यादा, हुमाजा का मतलब बहुत ज्यादा ताने देने वाला, और लुमाजा का मतलब मुफसरीन ने किया बहुत ज्यादा चुगलियां करने वाला, गीबतें करने वाला। तो हुमाजा हमें क्या पता चला, जो सामने करता है, क्योंकि जो ताना होता है वो सामने दिया जाता है, मुंह पे करता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम पीछे पीछे नहीं बात करते भाई, हम तुम्हें सुना के करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात नहीं है फिर आप हुमाजा में, और लुमाजा वो जो पीठ पीछे करता, दोनों के लिए तबाही है। अब इंसान देखे कि हम अपनी गुफ्तगू में ताने कितने देते हैं, गीबतें कितनी करते हैं, चुगलियां कितनी करते हैं, ऐसा इंसान वैल का मुस्तहिक है। हुमज़ा असल में हम्स कहते हैं ब्रेक करना, किस चीज को तोड़ देना, ऐसा इंसान भी देखे ना, जब दूसरे के सामने बैठा होता है और उसको मजाक कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको तंज कर रहा है, उसको तानों के तीर बरसा रहा है, उसके उसकी इज्जत उछाल रहा है लोगों में बैठ के, तो वो तोड़ देता है उसको, अंदर से काट देता है उसके दिल को। अच्छा, इसका एक और भी माना मुफसरी ने किया कि जो हम हुमज़ा है ना, वो आज़ा से होता है, यानी इशारे करना, एक्शन से, भवें चढ़ाना, हाथों से इशारे करना, इस तरह से करके करना, वो लिम से है, ठीक है, और जो लुमज़ा है वो जुबान से होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी तफासीर में चीजें आई हैं, सारी ही आप लिख लें तो समझ लें, हुमज़ा इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, लोगों के सामने बैठ के, मजलिस में बैठ के दूसरे को ऐसी ही बातें सुना देना, या ऐसे इशारे कर लेना, या दूसरे के साथ ऐसे बेइज्जती उसकी कर देना, जलील करना, कि वो अंदर से बेचारा टूट फूट जाए, समझ आए। और लुमज़ा है यानी अपनी, चाहे आप उसको कहते हैं जुबान से जलील कर रहा है, या फिर वो आप कहते हैं जो पीठ पीछे कर रहा है कि अब गीबत कर रहा है, ऐब चुन रहा है, किसी को पीठ पीछे उसकी इज्जत उछाल रहा है, उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहा है, इल्जाम तराशियां उसके ऊपर कर रहा है, पीठ पीछे बैठ के उसकी इज्जत खराब कर रहा है, तो जो भी मुंह से लफ्ज निकलता है ना, जिसे दूसरे को जलील किया जाए, हकीर किया जाए, या उसको तमस्खर उड़ाया जाए, या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, या उसको बेइज्जत किया जाए, ये लम्स है। अल्लाह अकबर। ताए मरबूता एंड में है, होमाजा और लुमाजा भी हो सकता था, लेकिन होमाजा और लुमाजा है, और ताए मरबूता एंड में ताकीद के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, मुबालगा इसमें, एक्सेसिवनेस है कि बहुत ज्यादा करता है। उसका तरीका ही यही, इधर बैठता है, उसकी बातें उसकी बातें, उसकी आदत है, सारा वक्त उसका इसमें गुजरता है। असल में जिनकी जिंदगी को भी मकसद नहीं होता ना, कहते हैं जो बामकसद लोग होते हैं वो आइडियाज को शेयर करते हैं, जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, उनकी गुफ्तगू हर वक्त लोगों के गिर्द घूमती है, फलाने ने ऐसे कर दिया, फलां ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। और इसका मतलब ये भी है, दूसरों के ऐब तलाश करना, उनके ऐब चुनना, यानी किसी को वॉच करते रहना कि मैं कहाँ देखूं कि इसकी कोई बात मुझे मिल जाए। अब किसी के घर गए, क्या चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं लोगों को बताऊंगी कि देखो ये तो ऐसी ऐसी है। अब मैं किसी की पार्टी में जाऊं, जरा यहाँ पे देख के आऊं करते क्या है, फिर उसके बाद लोगों को बताऊंगी मैं तो उसकी पार्टी में गई थी, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब ये फारिग लोगों का ही काम हो सकता है ना, वाला आसर इन्नल इंसान लफी खुसर, जिसको इस चीज का एहसास ना हो कि वक्त जा रहा है, उम्र जा रही है, खसारा होता जा रहा है, मैं किधर लगी हुई हूं, जिसको इसका एहसास ना हो ना, फिर वो इन्हीं कामों में वक्त लगाते। इसीलिए कहते हैं कि लोगों के घरों में जाएं तो अंधे बन के जाएं, अंधे बन जाएं वहां पे, यानी जैसे मैं कुछ भी नहीं मैंने देखा, और बाहर निकले तो गूंगे बन जाएं कि आपने किसी को कुछ नहीं बताना। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे, क्या जरूरत है बोलने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों में बड़ा गुनाह यह कि एक मुसलमान दूसरे पर ना हक जुबान दराज करे, यानी जुबान को इस्तेमाल करे उसके बारे में ना हक बात करने के लिए। असलाफ में से ऐसे होते थे, गिन गिन के बात करते थे कि मैंने हमने अल्फाज गिनने हैं कि हमने कितने अल्फाज आप बोले, तो कितने केयरफुल थे, उनको ये फिक्र होती थी कि हमारी जुबान से क्या निकल रहा है, अगर कोई बेनिफिशियल बात नहीं है तो चुप ही रहे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तलमीसू अनफुसकुम, तुम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, एक दूसरे के ऊपर ऐब ना चुना करो, एक दूसरे की गिबतें ना किया करो। ये तो ना हो कि हम नमाजें पढ़ते रहें, हज रोजे करते रहें, और हुमाजा और लुमाजा हो, और कयामत के दिन मुफलिस हो जाएं क्योंकि हमारी नमाज रोजे ये सारे लोग ले जाएं जिनकी हम ऐब ढूंढते थे। अब किसी की कोई बात पता चल जाए सही, बस इश्तेहार लगाना, उसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, आप चैन तो आ नहीं रहा ना, चैन तब आएगा जब तक सारों को पता ना चल जाए, किसी बात हाथ लग जाए सही। इसी तरह किसी की मजाक उड़ाने, तंज करने, अब ये चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वालदैन बच्चों के साथ कर रहे हैं, सास बहू में हो रहा है, बॉस है जिसने अपने सबॉर्डिनेट्स को, ये मुलाजमों को, उनको ऐसे करता है कि तंज पे तंज किया जाता है, इंसान को अंदर से शटर कर देता है, उसकी इज्जत नफ्स खत्म कर देता है। ये वो इंसान है जिसे रहा नहीं जाता, वो बार बार यही काम करता है, हर वक्त इनमें से कोई काम कर रहा होगा, यानी जितने काम अभी मैंने गिनवाए हैं इनमें से कुछ ना कुछ में बिजी होगा, तो उसके लिए वेल है। जरूरी नहीं सिर्फ एक काम करता हो, सारे भी कर सकता है, गइबतें भी करता है, चुगलियां भी करता है, मजाक भी उड़ाता है, बोहतान भी बांधता है, लोगों के ऐब तलाश भी करता है, पीठ पीछे भी करता है, आगे भी मुंह पे भी बुराइयां करता है, और उसको अपनी बहादुरी समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे देखा था ना, लोग तांबे के नाखून थे कई लोगों के, उनसे खुद को छील रहे थे, अपने सीने भी और अपने चेहरे भी स्क्रैच कर रहे थे, सोचे कॉपर के नेल्स हो और उसे चेहरे को छीलना शुरू कर दे। तो फरमाया, ये वो है जो अपने भाई का गोश्त खाते थे, पीठ पीछे उनकी बुराइयां बयान करते थे। ये कब्र का अजाब था जो उनको मिल रहा था, कयामत के दिन क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। तो ये लोग दूसरों के लिए कितने तकलीफदेह हो जाते हैं, किसी के दिल में इनकी मोहब्बत नहीं होती। देखें अल्लाह ताला के हकूक को अल्लाह ताला माफ कर दे उसकी मर्जी, लेकिन बंदे उस दिन कयामत के दिन अपना हक नहीं माफ करेंगे। वो कहेंगे बस दो इधर ने किया, हमने हमें तो आज खुद जरूरत है, हमें हम तो नहीं तुम्हें बख्शेंगे। उस दिन भूल जाएंगे कोई किसी को माफ कर देगा, ओके तुमने मेरी गिरते की थी कोई बात ही माफ है, तुमने मुझे ये ताने दिए थे माफ है। उस दिन ले जाएंगे नेकियां दूसरे। तो कैसे इससे बचे हैं? एक तो इस चीज को समझे कि वैल है ऐसी जहन्नुम की वादी है हुमाजा और लुमाजा के लिए, और आगे भी होतामा की बात आती। दूसरी ये सोचे कि मेरी ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, अगर रिकॉर्ड हो रही हैं तो फिर चाहे वो टेक्स्ट में लिख रही हूँ चाहे बोल के लिख रही हूँ बोल रही हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रही हैं तो फिर अल्लाह ताला के सामने इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने पूछ दिया उस दिन कि ये क्यों किया था ये क्यों कहा था तो क्या होगा? फिर जो बात बोलने लगे सोच के बोलें कि मैंने बोलना भी है कि नहीं, इसमें कुछ फायदा है नहीं फायदा, तो रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों की मजलिस में ना बैठे नंबर फोर के जो ये आदत रखते हो, इसलिए कि उनके साथ बैठ के आपका भी यही हाल हो जाए। लेकिन कुछ मौके पर किसी की बात करना जायज है। कब? जब किसी का हक मारा जा रहा हो, जब किसी का हक ऐसे मारा जा रहा है कि मसलन किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है। अब वो शौहर हो सकता है, किसी की बीवी हो सकती है, किसी के कोई और हो सकते। अब वो अथॉरिटीज के पास जाता है और उनको जाके कहता है कि ये मेरे साथ ये हुआ है, तो वो जायज़ है। या किसी आलिम के पास कोई सवाल पूछने के लिए जाता है तो मसला बयान करेगा तो फिर उस हल बताएगा। फिर नंबर थ्री का, जब लोगों को नुकसान पहुंचाने से आप बचाना चाहते हैं, जैसे इस रिवायत में आता है बुखारी में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत दी तो आपने फरमाया इसको आने की इजाजत दे दो, ये अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने दो इसको। तो जबकि वो बैठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आपने उसके साथ बड़ी खंदा पेशानी से बात की, खुश मिजाजी से पेश आए। उस आदमी के चले जाने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलुल्लाह जब आपने इस आदमी को देखा था तो आपने ऐसे कहा था कि मतलब ये बुरा आदमी है अपने कबीले का, जबकि बाद में आपने इसे खंदा पेशानी से खुश मिजाजी से बात की थी, इसकी क्या वजह है? इस पे आपने फरमाया आयशा तुमने कभी मुझे बदखो पाया है? यानी मैं किसी साथ भी बुरे अखलाक से तो बात करता ही नहीं, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा शख्स वो होगा जिससे लोग उसके शर से बचने के लिए किनारा कशी कर लें। यानी हाँ, लोग उसे शर से बचने के लिए, क्योंकि उसका शर इतना है ना, वो इतना बुरा है, उसका शर है जिसकी वजह की कोई वो ऐसा इंसान जो फसादी है फितने फैलाता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गैर मौजूदगी में उसका जिक्र इस अंदाज में किया कि पता चल जाए कि वो ऐसा है, ये ना हो कि उसका शर दूसरों को पहुंचे। अब वो अपने कबीले में फितने फैलाता था और अब ना बताया जाएगा तो लोग धोखा खा जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो फितना बर्दाश्त है लेकिन लोगों को उसका पता नहीं है और किसी के साथ उसका मामला है, ये भी नहीं कि फिर लेके इश्तेहार लगाना शुरू कर दें, तो उस सूरत में बयान करें कि ये इंसान ऐसे ऐसे है, ये ना हो कि उससे धोखा खा जाओ, क्योंकि ये बातें तो अच्छी करता है लेकिन ये ना हो कि आप उसको खैर समझ लें और उसके बाद आप धोखा खा जाएं। तो आपने उसका हकीकत को बयान कर दिया। बाकी रहा उसके साथ नरमी के साथ पेश आना, तो ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही ऐसे थे। तो इसी तरह किसी ने कहीं शादी करनी है, आपको पता है कि दूसरा बंदा गलत है और आपका काम है कि आप बता दें, किसी ने कारोबार कहीं करना है तो उसको बता दिया जाए कि इस बंदे के साथ कारोबार ना करूं, ये ऐसे ऐसे है। और इसी तरह अगर किसी ने किसी के साथ हमसाईगी लेनी है, यानी हमसाईगी बननी है किसी की, तो फिर वो उस वक्त भी उसको बता दिया जाए कि ये लोग ऐसे हैं जिनके हमसाएगी में आप जा रहे हो। तो ऐसी वक्त के अंदर, जब खास तौर पे आजकल फितने बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे वक्त में हज़रत अली का कॉल है कि जब फितने बहुत हों, तो आजमाइशें बहुत हों, तो मत बनो उनमें से जो बातें फैलाने वाले हैं और हर मसले में बोलने वाले हैं। यानी हर बात पता है या नहीं पता, हमने जरूर अपने फतवे देने हैं, हमने जरूर बोलना। एक आदमी, किसी ने एक इंसान के पास आया और उससे किसी की चुगली की, तो उस नेक आदमी ने उससे कहा, तुमने मुझे तीन मुसीबतें दी हैं, तुमने मेरे और मेरे भाई के दरमियान दूरी डाल दी कि उसकी बात आके मुझे बताई, ये वो आ तो आपके लिए ये कह रहा था, तुमने मेरा दिल मशगूल कर दिया, यानी अब मैं इस बातों को ही सोचता रहूंगा, तुमने मेरे दिल में अपने लिए जो जगह बनाई थी वो भी बिगाड़ दी। इब्ने कसीर ने लिखा है कि चुगलखोर 1 घंटे में वो फसाद मचा देता है जो जादूगर भी 1 महीने में नहीं कर सकता। जो अगर ऐसे किसी बंदे के साथ वास्ता पड़े, तो फिर यही कहें कि मुझे अल्लाह काफी है। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के मुतालिक आता है कि कोई उनको अजियत देता था ना, तो इतना कहते थे, मुझे अल्लाह काफी है, बस अल्लाह के सपोर्ट छोड़ दें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, सबसे अफजल इंसान कौन है? आपने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। दिल का साफ और जुबान का सच्चा। सहाबा ने अर्ज किया, जुबान का सच्चा तो हम समझते हैं, दिल का साफ कौन होता है? आपने फरमाया, जो परहेजगार हो, पाकीजा हो, ना उसमें गुनाह हो, ना जुल्म, ना कीना, ना हसद, वो ही है, वो ही कल्बे सलीम वाला भी होता है, जिसको कल्बे सलीम को लेकर इंसान कयामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर हाजिरी देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा किसी ने पूछा कि बेस्ट लोग कौन है, बेस्ट? तो आपने फरमाया, वो जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिसको देख के क्या हो, अल्लाह ताला याद आ जाए। और बदतरीन लोग कौन है? जो लोगों के अंदर, दो मोहब्बत करने वालों के अंदर बिगाड़ डालते हैं, बिगाड़ डालते हैं, जो ताने देने वाले हैं, तंज करने वाले हैं, बिगाड़ डालने वाले हैं, लोगों के अंदर लगाई बुझाई करके उनको एक दूसरे से दूर करने वाले हैं। देखिए, आप जब तवासी बिलहक और तवासी बे सबर करने वाले होंगे ना, तो इतना टाइम ही नहीं इंसान को मिलता कि इंसान इन बातों की तरफ तवज्जो दे जो बताई जा रही है। इंसान फिर ये देखे, जब इसको ये पता होगा ना, मैंने अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, ये भी इंसान को फिर बाज रखता है इन कामों से। सुफियान सौरी ने अपनी जेब में एक पर्ची रखी हुई थी और हर वक्त उसको निकाल के देखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, तो उस पे क्या लिखा था? सुफियान, याद रखना तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना। अल्लाहु अकबर, ये चीज इंसान को फिर बाज रखती है। और इंसान इन चीजों से फिर डर जाता है करने से, तो हम उन बदतरीन लोगों में ना शामिल हो, जो लोगों को एक दूसरे से लड़ाते रहे, जो लोगों के दिल दूर करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जो अब तक जुबान के मुसलमान हो, अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गइबत ना किया करो, इनके ऐब तलाश ना किया करो, क्योंकि जो अपने भाई का ऐब तलाश करेगा, अल्लाह ताला उसके ऐब तलाश करेगा, और जिसके अल्लाह ताला ऐब तलाश करने लगे, उसको जिल्लत से दो चार कर देगा, चाहे वो अपने घर की चार दीवारी में ही क्यों ना बैठा हो। अल्लाह अकबर। तो वईल है हुमाज़ा और लोमाज़ा के लिए, अल्लदी जमा मालन, जो अपने माल को जमा करता है। अब पहले दो जुर्म बताए गए, अब तीसरा जुर्म है माल को जमा करना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलहाकुमुत तकासुर, माल को जमा वो ही करेगा और फिर उसको गिनना, अगला जुर्म माल को जमा करने में यानी लगा हुआ है, उसका काम क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी हर वक्त की एक फिक्र क्या है, और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। फिर इंसान इस चक्कर में पड़ जाता है 9 और 99 के, क्या इंसान कहते हैं ये इतने हो गए, अब इतने कब हो, 1,000 है तो 10,000 कब हो, 10,000 है तो लाख कब हो, लाख है तो 10 लाख कब हो। और ये वो इंसान है जो उसको फिर गिनता रहता है, गिन गिन के रखता है, इन नहुल हब्बिल खैरिला शदीद, माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है। देखिए बार बार गिनने का मतलब क्या है, कि उसका ध्यान इसी तरफ लगा हुआ है। क्या माल का गिनना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है अगर आप वैसे अपना हिसाब रखने के लिए गिन के रख रहे हैं, या जकात आपने देनी है, ये कोई ये गुनाह नहीं है। लेकिन एक होता है ना, बार बार चेक करें कितने हो गए आप। अच्छा, माल की यहाँ पे माल से मुलाद सिर्फ कैश ना समझें, हम सिर्फ अपनी लिमिटेड सोच ना रखें, बल्कि कैश तो है ही, मगर इसके अलावा बैंक बैलेंस हो गई, करंसी वो चांदी हो गई, सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, एनीथिंग, कोई भी चीज जो के पैसे में कन्वर्ट हो सकती है। आपने कोई प्लॉट लिए में, आप उनको आज बेचें वो कैश है, आप सोना है आपके पास उसको आज बेचें वो कैश है, ये सब माल है। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने शेयर खरीदे हुए हैं। अब जो इंसान इस चक्कर में पड़ जाता है ना, फिर वो बार बार उसको देखता भी तो है कि ओ आज शेयर कितना ऊपर गया, कितना नीचे चला गया, ओ इतना नुकसान हो गया, ओ इतना मुझे फायदा हो गया, ओ इतना, ओ आज सोने का रेट क्या हो गया, आज फलानी मेरे मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी ऊपर गई है, मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ पहुंची है, उसको बार बार देख रहा है, गिन रहा है, गिन रहा है। गिनना सिर्फ याद रखें कैश का नहीं, यानी हर वक्त ये प्लस माइनस वो करता रहता है, किधर फायदा हो गया, इधर नुकसान है, इधर ऐसे हो गया। तो मालन है ना, तनवीन है ना, नकीरा है ना, किसी किस्म का भी माल, अरे उसको हर वक्त माल जमा करने की, $1 भी पता चल जाए ना कि किस रास्ते से कमाया जा सकता है, तो चाहे वो हलाल का चाहे हराम का, उसको नहीं फर्क पड़ता। अब उसके लिए चाहे चर्स बेचनी पड़े, चाहे उसको वेप और नशे की दुकानें खोलनी पड़े, चाहे उसको लॉटरियां करनी पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे शराब बेचनी पड़े, चाहे सूद खाना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसने बस जमा करना है माल। जमा किस चीज को इंसान करने करना चाहता है? जिसका शौक रखता है, जिसकी हिर्स होती है, जिससे मोहब्बत होती है, उसी को जमा करता है ना। अब खवातीन को जेवर से मोहब्बत होती है, इसलिए जमा करती जाएंगी करती जाएंगी, तो वो भी माल है, जेवर भी माल है, वो मनी है, और क्या, आपने उसको सोने की सूरत में रख दिया। अब वो और उसको गिनता रहता भी है, आदादा है, आदादा, आदद सिर्फ नहीं है, आदादा नहीं है, आदादा, दो दाल आई है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब हरूफ बढ़ जाए तो माना भी बढ़ जाता है, कि माल से मोहब्बत इतनी है कि देखता ही रहता है, हर वक्त गिनता ही रहता है, बार बार अकाउंट चेक करता है, बार बार इन चीजों को चेक करता है, मोहब्बत जो इतनी है। और फिक्र भी फिर उसी की लगी रहती है जिस चीज से मोहब्बत होती है, जहन पे सवार भी फिर वही चीज होती है। तो गिनने का मतलब हमें ये पता चल गया कि उसका सारा वक्त फोकस इस पे रहता है, कितना आ गया, कितना जमा हो गया, कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। और जब ऐसी मोहब्बत होती है ना, तो फिर इंसान बुखल भी जरूर करता है, फिर उससे स्पेंड नहीं होता, क्योंकि जमा करने का शौक है ना, ये तो चला जा रहा है मेरे हाथ से, ओहो मैं नहीं इसको कहीं स्पेंड कर सकता। फिर वो जकात भी नहीं देता, सदकात भी नहीं देता, रिश्तेदारों पे भी नहीं खर्च करता, किसी को मुसीबत ज्यादा को देता है तो फिर भी माल रोक देता है, माल की मोहब्बत इतनी होती है। तो ऐसा इंसान फिर स्पेंड करने में भी बखील है। और सबसे बदतरीन बुखल जानते हैं क्या है, कि इंसान अपने ऊपर भी खर्च नहीं करे, अपनी जरूरत में भी ना लगाए, ये सबसे ज्यादा बड़ा बुखल है। एक दफा एक न्यूज में आया था कि एक फकीर था, वो उसके मरने के बाद जब उसके घर को देखा गया, इतना पैसा था उसके अंदर, करोड़ों था, और वो फकीर था, मांगता फिरता था। ये सबसे बड़ा बुखल है। वो तो बात की बात है ना, उसका मन में सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, इंसान अपने आप पे भी खर्च नहीं करता, हर वक्त रोता रहता है, हाय हाय हमारे पास नहीं है, कहीं कोई मांग ना लेना। तो यह सब वो समझता है, उसकी क्या, अब ये पांचवा उसका जुर्म है, अन्ना मालहू अखलदा, कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हमेशा के दो माने, ये नहीं वो कह रहा कि मुझे मौत ही नहीं आनी, वो तो सबको पता है मौत आनी है, मगर हमेशा रहेगा मतलब है लंबी जिंदगी इस माल की वजह से मुझे मिल जाएगी। और नंबर टू ये कि इसके बाद भी मेरे चर्चे होंगे, हालांकि माल के, यानी मैं माल के जरिए जिंदा रहूंगा, यानी मेरे माल की बड़ी बातें होती रहें, बहुत मालदार था, बड़ा कुछ छोड़ा इसने, देखो ये भी ये भी। हालांकि माल के ऊपर तो दुनिया में बड़े बड़े मालदार आए, अल्लाह अकबर, मगर कोई माल की वजह से याद नहीं रखा गया। माल देखें, इल्म वालों का नाम कयामत तक जारी रहेगा, माल वालों का नहीं है। इब्राहिम बिन शम्मास कहते हैं कि मैं समरकंद से अब्दुल्ला बिन मुबारक के यहाँ मेहमान हुआ, उन्होंने मुझे साथ लिया और शहर की फसीलों की सैर करवाई, फिर फरमाने लगे इब्राहिम जानते हो ये शहर किसने बनाया था? तो कहते हैं मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फरमाने लगे ऐसे अजीम शान शहर के बनाने वाले का किसी को नहीं पता, मगर सुफियान और सौरी जो ताबेई हैं उनको मौत के वक्त कफन तक भी नहीं मिला था, मगर उनका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। अब बुखारी को देख लें, उनके दौर में कितने मालदार और लोग थे, क्या आप उनके नाम जानते हैं? कोई भी नहीं जानता, मगर बुखारी का नाम जिंदा है। वो जो उलमा मुहद्दिसीन आसमानों के सितारे हैं, उनके नाम आज भी हैं। तो कसरत की चाहत इंसान को गफलत में डाल देती है, वो नेकियों से गाफिल, वो आखरत की फिक्र से गाफिल, वो लोगों को नफा पहुंचाने से गाफिल, वो कहता है बस मेरा बन जाए, मेरा और बन जाए और बन जाए, वो और बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है, हालांकि ये और उसको हमेशगी नहीं दे देगा, कोई उसको याद भी ना रखेगा, वो समझता है कि मैं हमेशा रहूंगा, या ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा, या मैं अखलदा हूं, ये वो रहेगा हमेशा या माल रहेगा हमेशा, हु की जमीर दोनों तरफ जा सकती, ना वो रहेगा बाकी, उसका नाम बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, कारून के पास कितने पैसे थे, क्या फायदा हुआ उसको? आज कोई अपने बच्चे का नाम कारून नहीं रखता, अच्छे लफ्जों में याद नहीं करता। तो अल्लाह अकबर, तो ये लोग हैं, जब इनके पास पैसा आता है, माल आता है, तो फिर ये हुमज और लुमजा भी करते हैं, इसलिए कि फिर किसी को खातिर में नहीं लाते, किसी को कुछ समझते नहीं है, फिर लोगों के ऐब ही इनको नजर आते हैं, कभी उस पर टॉन्ट करते हैं, कभी उसके फॉल्ट निकालते हैं, कभी उसको कुछ कहते हैं, क्योंकि अपने आप को फिर बड़ी चीज समझना शुरू हो जाते हैं ना, वो समझते ना मैं बहुत, मेरे पास है। इन्नल इंसान ला यतगा अरहुस्तगना, इंसान सरकश हो ही जाता है जब अपने आप को बेनियाज समझता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो सरकशी आ ही जाती है उसमें, कभी उसके ऊपर एहसान जताता है, कभी किसी को कुछ जितलाता है, और कभी किसी के से बदतमीजी करता है, क्योंकि ये मटेरियल जो जो होता है ना, ये उसके दिमाग पे इसका नशा सवार हो जाता है। माल का भी एक नशा होता है, तो ये नशा दिमाग पे चढ़ जाता है। फिर इंसान बस ये समझता है बस मैंने यही रहना है। अच्छा, यही रहने का एक ही मतलब भी है कि वो फिर ऐसे ऐसे घर बनाता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है, ऐसे ऐसे प्लानिंग्स करता है, ऐसे ऐसे सामान करता है, जैसे उसने हमेशा रहना है। अब देखें इन आयात का इम्पैक्ट फील करें कि हम ऐसे ही तो नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस हमने खुद अपने लिए लगाने हैं। तो वो जुबान से ना भी कह रहा हो कि मैंने हमेशा रहना है, मैंने कोई आबे हयात पी ली है, उसकी स्पेंडिंग ऐसी होती है जैसे इसने हमेशा रहना। इब्ने कसीर लिखते हैं कि उसका माल उसका वक्त ले जाता है और उसके पास कोई वक्त ही नहीं बचता कि वो कोई दिन और रात में कोई ऐसा काम करे कि जिससे कि वो अपनी आखरत संवारे। सारा दिन माल कमाना, रात को सो जाना गाफिल होके। अखलादा जैसे खालिद है ना, उसी से खालिद भी हमेशा रहना होता है ना। एक माना इसका ये भी है कि वो माल के कमाने में और जमा करने में और गिनने में इतना मशगूल होता है कि वो मौत को ही भुला देता है। इसको ख्याल ही नहीं आता कि उसने मरना है। उसको जैसे हम नहीं लोगों को देखते तो हम उसको कुछ ऐसा कोई बुरा जुर्म करते हुए, कोई ऐसी बुरी हरकत करते तो कहते हैं इन्होंने मरना नहीं है, इनको ख्याल नहीं कि इन्होंने मरना है। तो हम क्यों कह रहे होते हैं कि इसने भुला दिया कि इसने मरना है। अतुहिब्बुन अल-माल हुब्बन जम्मा, अल्लाह अकबर। अब इसका नुकसान क्या होता है? एक तो उसके अंदर बुखल आ जाता है और बुखल उसको अजर से महरूम कर देता है। दूसरे ईमान में भी कमजोरी आती, इसलिए कि अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला और देगा जिसने पहले दिए। तीसरे ये कि लोग भी उससे नफरत करते हैं, किसी को वो पसंद नहीं आता जो बस माल जमा करता है, उसकी हिर्स में लगा हुआ है, अब्दु दिरहम और अब्दु दीनार बन गया, उसी का गुलाम बन गया, माल की पूजा करता है। और फिर उसके बाद वो गुनाहगार भी हो जाता है, इसलिए कि फिर वो अपनी ना ज़कात देता है ना सदकात देता है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो वो ये समझता है कि पता नहीं इसी माल ने रहना है और इसी माल के बस गिनने और रखने और संभालने और इसी के साथ बस लगे रहने में उसके दिन गुजर रहे हैं, रात गुजर रहे हैं। कई लोगों को देखा है ना, उनको खाने का भी होश नहीं होता, वो इतने ज्यादा अपने बिजनेस और अपनी जॉब्स और अपनी इन चीजों के इतने गर्क होते हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कुछ होश नहीं, ना नमाज का होश, ना किसी और, दुनिया में जो हो रहा है कुछ हो रहा है हमें नहीं परवाह, हमारा बिजनेस हमारी जॉब हमारा ये। तो आगे अब उसकी सजा बताई गई कि इसकी सजा क्या होगी जिसके अंदर ये जरायम पाए जाएं। कल्ला, पहले कहा गया कल्ला, हरगिज नहीं। ये क्या मतलब होता है? यहाँ पे ला नहीं कहा गया, कल्ला। इसके अंदर बहुत सख्ती होती है इस लफ्ज में कि हरगिज नहीं, यानी इसकी ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं कि माल मुझे दवाम दे देगा या माल को जमा करना या गिनते रहना ये दुरुस्त नहीं है। तो कल्ला जो है ये मक्की सूरतों में ही लफ्ज आया, मदनी में नहीं आया, इसलिए कि जो जिनके साथ बात हो रही थी, जो मुखातिब है, वो इतने ढीठ हैं और इतने सख्त मुखालिफीन हैं, उनके सामने पैगाम रखा जाता है, वो आगे से फिर कुछ सुना देते हैं। तो कल्ला धमकी है और सख्ती है और डांट है इसमें, इस लफ्ज में। ये कुरान पाक में 33 टाइम्स आया और पहले निस्फ में नहीं आया कुरान के, बाद वाले में आया। तो ला युम बदन्ना, कल्ला की बात हो गई, अब ला युम बदन्ना, नबजा से। नबजा कहते हैं किसी चीज को हकीर फालतू बेकार समझ के फेंक देना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खजूर खा के उसकी गुठली उठा के फेंक देते हैं, या च्युइंगम आपने ना जब चबा ली होती तो उसके बाद मुंह से ऐसे थूक के फेंक देते हैं, आपको नहीं परवाह ये कहाँ पे भी गिरे। यहाँ पे लयुम बदन्ना आया, ये नहीं आया कि अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा, वो भी तो आ सकता था फिल होतामा, होतामा में नहीं, नबता का लफ्ज है। और आपको पता है ये लफ्ज पहले कहाँ आया? पहले सूरह बकरा में भी आया है, और पनबद ना हो यम्मी, जब उनको फिरौन और उसके 20 लाख का लश्कर था, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये फरमाया था, उनको दरिया में, समुंदर में उनको इस तरह से फेंक दिया गया जैसे वो कुछ नहीं है, बेकार चीज है। तो अल्लाह ताला उस दिन उनको इस तरह फेंकेगा। अब यहां पे देखें अंदाज कैसा है, लफ्ज क्या लाया गया, और ये कितना इनसिग्निफिकेंट और कितना हकीर है अल्लाह की नजर में कि इसको ऐसे फेंका जाएगा जैसे ये कोई हैसियत नहीं रखता, जैसे ये कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, जिसने ये जुर्म किए उसका ये अंजाम है, और देखिए ये कितना खौफनाक अंजाम है। अब देख ले ये किन जरायम वाला बंदा है, हुमाजा और लुमाजा करने वाला। अब जो मैंने हदीस आपको बताई उसमें कुछ थोड़ा सा उसको तस्दीक कर लें, जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए कि आपने बताए जो कि अल्लाह के बदतरीन बंदे कौन होते हैं, तो वो थे, उनमें एक चुगलखोरी भी थी। चुगलखोरी करते हैं दोस्तों के दरमियान या दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान तफरीक डाल देते हैं, बागी हैं, बेजार और सरकश होते हैं। ये 5 बातें बताएंगे जो अल्लाह के नजदीक बदतरीन है, और बेहतरीन कौन थे? जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अकबर। तो ये वो बंदा है जो लानत करता है, और मोमिन लानत करने वाला नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन फोहश गो नहीं होता, मोमिन बेहुदा गो नहीं होता। फोहश गोई ये भी है लोगों के ऐब चुनना, बेहुदा गोई ये भी है लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किरदार उछालना। किसी लड़की को देख लिया तो उसका उसके साथ चक्कर होगा, देखो वो उस लड़के का इसके साथ है, देखा फलाना है फलाने के साथ है, ऐसी लोगों की बच्चियों के बारे में बातें करना, ऐसी बातें उछालना, किसी के किरदार के ऊपर ऐसी बात कर देना, फलां जो है ना वो करप्ट है, वो उसने खा लिया पैसा, अब आपको कुछ पता नहीं, और ऐसी इल्जाम लगा दिया। और बहुत जगह पे ये हुमाज और लुमाजा कितनी जगह पे होता है, आप देख लेना, ये जब स्कूल्स वगैरह में कॉलेजेस में फेयरवेल्स होती हैं तो पार्टियों के अंदर टीचर्स के ऊपर कैसे हंसा जाता है, वो कैसे उनका मजाक उड़ाया जाता है, कैसे पैरडी की जाती, वो भी हुमाजा लुमाजा में आ जाता है। और इसको कहा जाता है कि नहीं ये तो मजाक है ना, तो क्या हो गया, देख लें उसकी सजा होतामा है, जहन्नुम का एक नाम है। कितना खौफनाक मंजर है कि इस तरह उनको फेंका जाएगा उसमें। इंसल्ट करना दूसरे की ये छोटी बात नहीं है। आप शादियों पे देख लें, लोग मेहंदियों पे गाने गाते हैं तो उसमें क्या ससुराल वालों को इंसल्ट करते हैं, उनके ऊपर गाने बनाए होते हैं, फलां ऐसी फलां ऐसी, इससे तौबा करनी चाहिए। कभी खुद को इन चीजों से इम्यून ना करें। और बहुत सारे लोग तो इतने इसके शौकीन होते हैं, आके पूछते हैं व्हाट्स द हॉट जूसी गॉसिप टुडे, उनको मजा आता है इन चीजों में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाते ही किस लिए हैं? ताकि ये देखें कि हम किसी की कोई चीज देखें फिर उसको फैलाएं, हाँ फलां देखा मैंने उसको, फलां ऐसे करते देखा था, सब हो मजा लो मजा में। और आज और आसान हो गया क्योंकि किसी को मिलने की जरूरत ही नहीं, घर पे बैठे कंप्यूटर के ऊपर सोशल मीडिया पे यही काम करते रहे, इधर की उधर पहुंचा दी, उधर की उधर लगा दी, इसकी गइबत उसकी चुगली, लोगों के दरमियान नफरतें, शोहर को बीवी के खिलाफ कर दिया, बीवी को शोहर के खिलाफ कर दिया, सास को जाके लगा दिया, तेरी बहू ये कह रही थी, बहू के कह दिया, तुम्हारी पता है सास क्या कह रही थी आज, ये सब हुमाजा और लुमाजा है। देर किसी के ऊपर तंज कर दिया, किसी की तस्वीर देखी तो तंजिया कुछ लिख दिया नीचे, टेक्स्ट को कमेंट दे दिया ऐसा, हम कितने आराम से होमाजा और लुमाजा कर रहे होते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं। किसी पे कीचड़ उछाल दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया, और मजाक को तो कुछ समझते ही नहीं ना, उसको सिर्फ अगर कोई इस पे बुरा मान ले तो उसके ऊपर उसको बल्कि उल्टा बुरा कहते कि तुमसे मजाक भी नहीं लिया जाता, हमने मजाक किया था और तुमसे इतना भी नहीं सहा जाता। कभी सोचें आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हो तो आपको कैसा लगता है? दूसरों के साथ जो करते हैं मजलिसों में बैठ के, फिर सब हंसते हैं और इसको हमने क्या नाम दिया था, फलां का रिकॉर्ड लगाया आज हमने। अल्लाह हू अकबर। और अल्लाह ताला अगर किसी का रिकॉर्ड लगा दे तो क्या हो उसका, अल्लाह उसके ऐबों के पीछे पड़ जाए तो क्या हो, कभी किसी के नाम का, कभी किसी की शक्ल का, कभी किसी के हाल हुलिये का, कभी फलां तो तुम पेंडू हो तो इसका पहनना ओढ़ना ऐसा, इसका ये ऐसा, ऐब चुनने लोगों के, अखलाकी बुराइयां सब इसमें आ गई। अल्लाह अकबर। और देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह के नजदीक ये अहमियत रखता है। और अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत नेक पारसा हैं लेकिन हम इन जराइम का शिकार हैं, तो लिकुल्ली हुमाज़त लुमाज़ा है, फिर जितने मर्जी नेक पारसा बन जाए उनके लिए लयुम्बदन्न फिल हुतमा, वो डाले जाएंगे, डाले नहीं फेंके जाएंगे। और ल भी है और नून मुशद्दद भी, और दोनों ताकीद के लिए हैं, यानी जरूर बजरूर ऐसा होगा कि उनको फेंक दिया जाएगा हुतामा में। हुतामा क्या चीज है? हतम कहते हैं क्रश करने को, और हुतामा क्रशर समझ लें। आपने गन्ने को देखा है, वो मशीन में जब डालते हैं तो उसका जूस निकालने के लिए दूसरी तरह से कैसे क्रश होकर निकलता है, समझ लें पीस देना, तोड़ फोड़ देना, ये जहन्नुम का नाम है। ये तोड़ फोड़ देगी। आप सर हमने फरमाया मैंने जहन्नुम देखी, वो अपने अंदर आने वाले को पीस रही थी, तोड़ फोड़ रही थी। ये उनको क्यों, ये क्यों नहीं कहा गया लयुम्बदन्ना फिल जहीम, हुतामा क्यों कहा गया? एक तो पहली बात ये जहन्नुम के दर्क है ना, नीचे 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 जाते हैं, 7 दर्क है, उसके दर्जे नहीं है, दर्क है जो नीचे जाते हैं, तो ये नीचे वाला है, 6th है बास जगह पे लिखा हुआ है। दूसरी बात ये होतामा नाम है क्रशर, पीस देने वाला। इनके जुर्म भी तो ऐसे ही थे ना, जुर्म के मुताबिक ही सजा है। ये लोगों को जलील करते थे, उनकी इज्जतें उछालते थे, उनके एहसासात को मजरूह करते थे, उनके मजाक उड़ा के उनको अंदर से तोड़ फोड़ देते थे, तंज कर करके लोगों की के यानी रुला देना किसी को, इतना हकीर और बेइज्जत कर देना, इंसल्ट कर देना कि दूसरा जो है ना अंदर से पिस जाए, क्रश हो जाए। आज इनके लिए भी ऐसी ही सजा है कि होता मैं भी डाले जाएंगे जो उनके गोश्त पोश को सबको खा जाएगी, क्रश कर देगी इनको, ग्राइंडर देख लें कोई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये होता माह भी क्या है, एम्फसाइज करने के लिए, ताकीद के लिए। इससे इसकी सिवियरिटी पता चलती है। और इब्ने अब्बास ने फरमाया कि कोई भी चीज आखरत की चीजों में से, कोई भी चीज सिर्फ नाम की हद तक दुनिया की चीजों से मुमासलत रखती है, वरना उसका कोई कंपैरिजन नहीं, ना शक्लो सूरत में, ना उसके, मसलन आग ही है तो ना आग, यहाँ की आग और वहां की आग में ये ना समझे कि आग है, उसमें और इसमें सिर्फ नाम की मुमासलत है, नाम कॉमन है, वरना शक्ल में, इंटेंसिटी में, टेम्परेचर में, कलर में, सब में अलग है, सिफात में अलग है। ये होतामा। और आप देखें होतामा को एक जगह हदीस में भी आया है, होतामा का वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन जिम्मेदारों में वो है जिम्मेदार वो मतलब जिसको कोई पोजीशन मिली हुई है, उसके अंडर कोई लोग आते हैं। तो जिम्मेदारों में से बदतरीन जिम्मेदार, यानी इंचार्ज समझ ले, इंचार्जेस में से बदतरीन वो है जो होता मैं भी, वो जो होता माँ है, यानी वो खुद होता माँ है। क्या मतलब हुआ? वो खुद होता माँ है। अभी मैंने आपको होता माँ का क्या मतलब पता है? क्रशर, पीस देने वाला। यानी वो इतना हार्श है ना लोगों के साथ कि क्रश कर देता है लोगों को अपनी बातों से। कभी इंसल्ट करता है किसी की, किसी को ऐसा जलील कर देता है, कभी किसी के साथ ज्यादती करता है, कभी किसी के साथ कोई मजाक उड़ाता है, कभी किसी को लेट डाउन कर देता है, किसी को बॉस अराउंड करता है ऐसा। आपने देखा है कई दफा लोगों के मुलाजमीन ही उनको कत्ल कर देते हैं कि भी हमसे नहीं रहा गया, इसने हमें इतना जलील कर दिया, इतना जिच कर दिया, इतने कई लोगों को बेइज्जत कर देते। अब वो चाहे वो बॉस है उसके अंडर उसके सबॉर्डिनेट है, चाहे वो टीचर है उसके इसके साथ नीचे उसके स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी इंचार्ज की मैं बात कर रही हूँ ना, चाहे कोई वालदेन है अपने बच्चों को क्रश करके रख रहे हैं, चाहे कोई सास है जो अपनी बहू के साथ ऐसा कर रहे हैं। यानी जो भी जिम्मेदार है किसी पोजीशन के ऊपर है और वो दूसरों के लिए होता मां बन गया, वो बदतरीन इंचार्ज है, बदतरीन। उसको जो पोजीशन मिली थी, पोजीशन ऑफ पावर मिली थी, वो कहीं पे भी है, कहीं पे भी आप देख, चाहे छोटी जगह पर, जरूरी नहीं आपकी कोई मुल्क के वजीर है या बादशाह या गवर्नर तो नहीं है, लेकिन आप कहीं पे भी, आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, आप अपने जो नीचे हैं या जिनकी जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो पता नहीं हमसे कितने ज्यादा अल्लाह के हाँ मकाम में हो। नीचे से मतलब ये नहीं कि वो नीचे हो गए उनसे, बल्कि मतलब ये है कि यानी इनकी जिम्मेदारी इस बंदे के ऊपर है, ये उनका इंचार्ज बनाया गया, लेकिन ये उनके लिए होता मां बन जाता है, ऐसा उनको जलील करके रखता है, ऐसा उनके साथ मुतकब्बिराना सलूक करता है, और ऐसा उनके साथ बात करता है, ऐसे उनकी दिल आजारियां करता है, ऐसे उनके उनको हकीर जानता है, सब इसके अंदर आ गया, वो होता माँ है। तो ये वर्ड हदीस में भी आया, अल्लाह अकबर। ये बंदा लोगों को की गइबतें भी करता था, लोगों को हकीर भी जानता था, खुद को यानी बड़ा समझता था, तो दूसरों को हकीर जानता है ना। अल्लाह ताला ने उसको लिए वो वाली आग तैयार की जो भी रोंद के रख देने वाली, क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर होगा लाजमी, जब भी लोगों की बातें करता था, अपने आप को कोई चीज जो समझता है वो ही फिर दूसरे को छोटा जानता है ना। मैं मसलन किसी पोजिशन पे हूं तो फिर मैं समझूंगी ना कि हाँ मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हो गई, ये सारे तो मेरे से कमतर है, हकीर है ये, तभी ये होगा कि किसी को बेइज्जत करें, तभी ये होगा कि किसी के ऐब उछालें, तभी लोगों के ऐब बहुत नजर आते हैं। तो जो इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता वो तो कहता है कि मेरे अपने अंदर इतने ऐब है, मैं दूसरे के ऐब क्या उछाल लें। हम सबके लिए लम्हा फिक्री है, कहीं ना कहीं हम इंचार्ज हैं किसी ना किसी के, अपने घर के हों, अपने इस इदारे में हों, हम कहीं अपने जॉब पे हों, क्या सलूक है हमारा हमारे उनके साथ, उन लोगों के साथ जिनके हम इंचार्ज बने हैं, जो हमारे पास नौकरी कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, या वो कम उम्र हैं इस वजह से बेचारे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, या वो स्टेटस में कम है उनके पास पैसा नहीं है तो इसलिए वो हमारे अंडर रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, जो भी वजह है हमारा उनके साथ क्या सलूक है, कहीं हमारे अंदर तकब्बुर तो नहीं कि मैं बड़ी हूं। बड़ी सिर्फ पैसे से नहीं होता, वैसे ही अपने आप को बड़ा समझना, अपने मकाम को, खानदान को, अपने और किसी पोजीशन को, अपने पावर को, इन चीजों से इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है, यकीनन फिर तकब्बुर आ गया। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ जन्नत में तो नहीं जा सकता। पढ़ते रहो नमाजें और पढ़ते रहो तहज्जुदें, अगर तकब्बुर लेकर दिलों में बैठे हुए हो, ये लोग तकब्बुर क्या होता है, तकब्बुर की क्या डेफिनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई? बतरुल हक व गमतुन नास, यही तो है, हक को ना मानना, झुटला देना, हक बात आपके सामने आई हमने नहीं मानना इसलिए क्योंकि हमारी मर्जी के खिलाफ है, उसका बिल्कुल ही इनकार कर देना, झुटला देना उसको, कोई सही बता रहा है आपको बात, लेकिन आप कोई आपकी मर्जी की नहीं है ना। ये तकबर की एक निशानी, और दूसरी लोगों को हकीर जानना। समझ लो कि दिल में तकबर है। जब कोई ऐसा नजर आता है, वो तो ये होते हैं, यानी किसी के नाम रखे में हमने, किसी खास जात पात के लोगों के नाम रखे हैं, वो तो फलां होते हैं, वो तो फलां ऐसे हैं, ऐसा मतलब हम अपने आप को बड़ा समझते ही हैं जो कह रहे हैं। हम तो बड़े आला खानदान और ऊंची जात से हैं। अल्लाह अकबर, या रब अल्लाह हमारे अंदर से ये बुराइयां निकाल दे या रब अलमीन, हमें माफ फरमा दे, हमारे मुंह से कोई बात निकली हो कभी जाने या अनजाने में, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो जो दुनिया में आग दिल में रखते हैं ना, आग उनके दिल में भड़क रही है किसी के भी खिलाफ, और उसके अंदर वो जल रहे हैं, और उसकी वजह से वो गिपते हैं चुगलियां, हसद, और इसके अलावा ऐब चुनते हैं, और इसके अलावा दूसरों को जलील करते हैं, क्योंकि उनके दिल में आग लगी हुई है ना किसी के लिए, आखरत में भी उसके लिए आग ही है। और जो ये पैरोडीज करते हैं और इसको उन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है, और फिर स्टेज पे खड़े होके कभी किसी को पिकअप कर लेते हैं, कभी किसी को पिक करते हैं, उसकी उसको बेइज्जत करते हैं, सब लोग हंसते हैं, ये भी मोमाजा और लोमाजा है। अब आप देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे उलमा को इसका अजर अजीम अता फरमाए, जो कितनी बारीकी से चीजों को देखते हैं ना, सुभान अल्लाह। के आप पिछली और इस आयत को देखें, जरा गौर कीजिए। अभी वो बंदा क्या था, ख्वाब देख रहा था, दुनिया में मजे कर रहा है, रह रहा है, मैंने हमेशा ही रहना है, यानी वो ऐसी जगहों पे स्पेंड कर रहा है, और ऐसे अपने माल को जमा कर करके रख रहा है, और इस तरह कर रहा है, और उसको ये लगता है कि मेरा बस, अब मैंने क्या मरना है, मौत उसको भूली पड़ी है, मर तो जाना है लेकिन मौत उसको भूली पड़ी है, वो बस अपने पैसे के अंदर इतना महव गर्क हुआ, लहाकुम तकासुर में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आयत क्या है, सुबहान अल्लाह, नेक्स्ट आयत क्या है, देखिए कल्ला ला युबतन्ना फिल हुतमा, समझ आई है कोई बात, क्या बात समझ आई। अल्लाह अकबर, जिन्होंने ये नुक्ते देखे कुरान में, इतनी गौर व फिक्र किया, तो ये नुक्ते निकाले हैं हमारे लिए, हम कभी गौर व फिक्र करें तो हमें समझ आए कि देखें, बता दिया गया अभी दुनिया में खड़ा था, नेक्स्ट आयत आई और हुतमा के साथ खड़ा हुआ, हुतमा के ऊपर खड़ा हुआ, हुतमा में गिरने वाला है, फेंक दिया जाने वाला है, इतनी जल्दी जिंदगी गुजर गई, वाला असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जिंदगी गुजर गई, मर गया, खप गया, लेकिन वो सब कैसे था, ब्लिंक ऑफ एन आई में, एक आयत से दूसरी आयत तक आना कितनी देर लगी, यहां से यहां बस इतना ही दुनिया का सफर था, खत्म हो गया सब कुछ, वो ख्वाब देख रहा था हमेशा रहने के, और देखो कितनी जल्दी पलक झपकने में वो कहाँ पहुंच गया, हुतमा के किनारे, और वाकई इंसान को नहीं पता चल रहा, उसका वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि ये वक्त सारा गुजर जाएगा, कहाँ गया कब्र का वक्त, और सब छोटा लगेगा, और इंसान अपने अंजाम के आगे खड़ा होगा, तब उसको रियलाइज होगा है वक्त गुजर भी गया, कहाँ गया वो सारा वक्त, आज इधर कल उधर, इतनी जल्दी ये सब गुजर जाएगा, आज सुहाने ख्वाब हमेशा रहने के, और मौत को भूला हुआ, अगला कदम होगा उसका, और वो अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा, जो चाहे जन्नत है या जहन्नम। अल्लाह अकबर, वमा अदराका मल हुतमा, और क्या चीज बताए तुम्हें कि हुतमा क्या है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अंदाजा हो ही नहीं सकता कि वो कैसी आग है, कैसी चीज है वो हुतमा, तुम जान ही नहीं सकते कि वो चूरा चूरा करने वाली, क्रश करने वाली क्या है। अब सवालिया अंदाज है, क्या चीज बताए तुझको इस अंदाज से, ये ताकि इंसान जरा थोड़ा सा इस चीज को समझे, क्या जैसे हम कहते हैं ना किसी को, तुम्हें क्या पता उसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें क्या पता। तो इसका मतलब उसकी स्वेरिटी तुम समझ ही नहीं सकते। और फिर मैंने आपको बताया था माँ अदराका के बाद जब बात आती है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाता है, मगर उसकी कुछ साइंस बताए जाते हैं, उसकी कुछ सिफात बताई जाती है, लेकिन समझ नहीं इंसान सकता। फिर भी नारुल्लाह, अल्लाह की आग है, यहाँ पे कहा गया अल्लाह की आग। जैसे पहले हमने पढ़ा नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। तो जब अल्लाह ताला के साथ निस्बत हो जाती किसी चीज की तो वो चीज बहुत बड़ी बन जाती है, यानी ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई वो नहीं है जो इंसानों ने आग जलाई हो, आग जलाते हैं इंसान और फिर बंद कर देते हैं, छोटी सी आग होती है, थोड़ी सी आग होती है, ये वो आग है जो अल्लाह की आग है। वो कितनी बड़ी चीजों की, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए, देखिए इससे समझे, अगर आपको और नहीं समझ आते तो इसे मैं कहूं कि ये फलां का घर है, मसलन ये आयशा का घर है। अच्छा आप कहेंगे ठीक है भाई, लेकिन मैं कहूं ये प्रेसिडेंट का घर है, अब कुछ फर्क पड़ा उस पे? एकदम आप हो जाते हैं लड़, वो अच्छा प्रेसिडेंट का घर। अब एक आग है, सारी आग है दुनिया में जो आग जलती है, एक है नारुल्लाह। तो अब आप सोच रहे हैं जितना बड़ा अल्लाह है तो उसकी आग भी कितनी बड़ी होगी, फिर सोचें जरा, जितना बड़ा अल्लाह ताला है उसकी सजाएं भी उतनी ही ज्यादा इंटेंस होंगी, उतनी स्वेयर होंगी। तो ये बताना मकसद है नारुल्लाह कह के, बाकी सारी आगे भी, दुनिया की आगे भी अल्लाह की आग है, सब चीज ही अल्लाह की है, मगर जब अल्लाह ताला के साथ निस्बत आ जाए तो ये ना समझना कि जो इंसान जलाते हैं आग ये आम आग नहीं है, ये अल्लाह की आग है, उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी आग के साथ। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नारुल्लाह, अल्लाह की आग, अल्लाह की आग जो बहुत स्वीयर आग है, जो बहुत बड़ी आग है, जो हजारों साल तक जलाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,000 साल तक उसको जलाया गया, 1,000 ईयर्स, कितनी सेंचुरीज बन गई, 1,000 ईयर्स जलाई गई तो वो सुर्ख हो गई बिल्कुल, फिर उसके बाद 1,000 साल जलाई गई तो फिर वो क्या हो गई, सफेद हो गई, और फिर 1,000 साल जलाई गई तो फिर सिया हो गई। फिर आपने फरमाया वो अब अंधेरी रात की तरह सिया है, और उसकी सिफत क्या है, अलमुकदह, सुलगाई हुई, वकूद से, वाउकाफ दाल से, यानी वो ऐसी है जो जलाई भी है सुलगाई भी है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की आग जो उसने सुलगाई है, वो इंसानों ने नहीं बनाई थी, इसका तसव्वुर तो इंसान कर भी नहीं सकता। और ये ना कोई यानी सोचे कि वो अलमुकदा है ना, अलमुकदा क्या है, नाउन है, जब नाउन होता है ना तो उसमें परमानेंट का माना आ जाता है, यानी ये ऐसी आग नहीं जो जलाई, तो आप देखें दुनिया में आगे हैं कहीं भी लगती भी हैं, अगर कोई ना बुझाए तो खुद ब खुद बुझ जाती है, चलो उस दिन नहीं बुझेगी तो हफ्ते बाद, तो महीने बाद बुझ जाएगी, बुझ तो जाएगी ना आखिरकार, कोई भी आग जली नहीं रहती दुनिया में, लेकिन ये अल्लाह की आग वो है जो परमानेंट है, हमेशा जब से अल्लाह ताला ने इसको बनाया जल रही है, वो बुझती नहीं है, और वक्त के साथ साथ खुद बुझ भी नहीं जाएगी, ये याद रखना। इंसान सोचे कि चलो खत्म ही हो जाएगी तो कोई, ये हुतामा है, ये आम बात नहीं है, ये हुतामा की डिस्क्रिप्शन है ना। अब ये जो है वो है जब किसी चीज को जोर से स्मैश किया जाए ना पूरी ताकत के साथ, तो वो होती है खत्म। अब आप सोच लें कि जहन्नुम ऐसी है, वो तो क्या इंसानों का करेगी वो, और क्या उसमें पहुंच के उनका हाल होगा। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर अगली इस आग की सिफत क्या है, अल्लती तत्तलियु अलल अफ़ईदा, वो जो चढ़ती है, तत्तलियु चढ़ आती है, तुलू से ना, जैसे अब सूरज भी तुलू होता है तो चढ़ता है ना, सूरज चढ़ गया, अल्लाहु अकबर। तो ये दिलों को चढ़ेगी, अलल अफईदा, फुआद की जमा अफईदा, दिलों पर। तो पहली बात ये कि ये तुलू हो रही है, यानी ऊपर को चढ़ रही है, ऊपर को चढ़ते चढ़ते, यानी नीचे से शुरू होगी और चढ़ते चढ़ते इंसान के गोश्त पोश्त को खा लेगी, जिल्द को जला देगी, हड्डियों को खत्म कर देगी, नर्व्स को, सब चीजों को, हत्ता के वो दिल तक पहुंच जाएगी। और वो इंसान अभी भी जिंदा होगा, मर नहीं जाएगा यहाँ पे दुनिया में। अल्लाह ताला माफ करे कभी आप जो अस्पताल में किसी बर्न के वार्ड में जाके देखें, जो लोग जले होते हैं उनका हाल क्या होता है। तो ये दुनिया की आग होती है और आखरत की ये होतामा, जिसका नाम ही होतामा है, ये जब नीचे से ऊपर सीने तक जली जल के चढ़ेगी। तो दिल की बात स्पेसिफिकली क्यों आई? एक तो ये कि दिल सबसे ज्यादा यानी महफूज है, ठीक है, दिल महफूज है। दिल के अंदर जो भी है, दिल एक केज के अंदर है, समझ लें एक केज में है, ये जो रिब केज है इसके अंदर है, हड्डियां सबसे सख्त इसके इसको उन्होंने घेरा हुआ है, उसके अंदर ये दिल पड़ा हुआ। अब ये दिल तक अगर पहुंच गई है, तो सोच लें कि फिर बाकी आजा जो बगैर किसी हड्डियों के वैसे ही हैं, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डियां किसकी हैं, ये रिब केज है और स्कल है, इन दो आजा को महफूज रखने के लिए, दिमाग को और दिल को, ये यहां तक पहुंच गए तो बाकी धड़ के जलने का क्या हाल होगा, कि इसने तो ये इन हड्डियों को भी चूरा चूरा कर दिया। दूसरी वजह ये है कि दिल ही तो थे ना जिसके अंदर माल की मोहब्बत थी, लोगों के लिए कीने थे, लोगों के लिए बोझ थे, तकब्बुर भरा हुआ था कि मैं बड़ी चीज हूं, और जो ये ख्याल, ये जो यकीन था अपने अंदर कि अन्ना मालहू अखलदा, कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा, या उसके पास, या उसको हमेशा रखेगा, ये भी दिल के अंदर यकीन था। तो जुर्म के मुताबिक ही सजा होती है, तो जुर्म में दिल था इन्वॉल्व, इसलिए दिल को पड़ती है ये आग। और फिर ये भी कि बाकी जिसम एक हद तक आग को बर्दाश्त कर सकता है, फिर भी अगर किसी का हाथ जल जाए, पैर जल जाए, अल्लाह माफ करे, मगर दिल एक सेकंड को भी, पता है, आग को बर्दाश्त नहीं करता। उस बंदे का हाल क्या होगा, वो फिर भी जिंदा है। और आलल अफीदा ऊपर चढ़ गई है, दिल के ऊपर है, यानी दिल को उसने कवर कर लिया। इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो उन पर बंद की हुई है, यानी ये आग उन पर पूरी तरह मुसदा, वो सौद दाल, ऊंधा करना भी किसी चीज को, यानी सील कर दिया गया उनको आग के अंदर, उन पर, यानी जो जहन्नमी है, जो जो वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा, ये जो हुमाजा लुमाजा करने वाले, जमा मालन करने वाले, अददा करने वाले, और जिन्होंने ये समझा होता कि उनका माल हमेशा रहेगा, तो उनके ऊपर पूरी तरह छा गई है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इंसान दुनिया में आग को कंट्रोल कर सकता है, मगर ये आग उसको कंट्रोल करेगी, ये सील बंद होगी। देखें आप, जब भी कोई चीज़ पकानी भी हो और उसको गलाना हो, तो क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। प्रेशर कुकर है या अवन है, उसको लॉक करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया मुसादा, वो बंद की गई है, लॉक कर दिया गया उनको उसके अंदर। प्रेशर कुकर का अंदाजा करें, और फिर उस पर सख्त भी चीज गल जाती है, फिर क्या होता है, जब ऐसे सील बंद कर दी जाती है, ना कोई चीज बाहर आ सकती, ना कोई चीज अंदर जा सकती, यानी कोई हवा का झोंका अंदर नहीं चला जाएगा जो उसको सर्द कर दे, ना वो बाहर आ सकेगी। जहन्नुम के भी आपको पता है दरवाजे हैं ना, जो बंद कर दिए जाएंगे, और वो दरवाजे ईमान वालों के लिए तो रहमत है, और काफिर के लिए अजाब और हसरत है। कैसे? इसलिए कि दरवाजा है, तो ईमान वाला अगर कोई चला गया जहन्नुम के अंदर, तो अपनी सजा भुगत के उस दरवाजे से निकल आएगा, लेकिन काफिर के लिए हसरत और अजाब है, इसलिए कि ये साइकोलॉजिकल अजियत है, कि दरवाजा है और उसको लगता है कि मैं दरवाजे से पार हो जाऊंगा तो मेरे लिए आजादी है, मगर वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकता, ये भी एक टॉर्चर है। तगफिरुल्ला, तो जहन्नुम में कैद खाना है जिसका एक दरवाजा है जिसको सील कर दिया जाए। माफ फरमा, अहमद मुमत्ता था ये, अहमद अहमद सुतून, मुमत्ता लंबे, मद से लंबे, दो दाल है यानी ये सुतून बहुत लंबे होंगे। इससे मतलब क्या है? एक मतलब इसका ये है कि जो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और लॉक कर दिए जाएंगे, तो ये लॉक के लिए ये सतून इस्तेमाल होंगे। फी का मतलब है कि उनको उनके साथ लॉक किया जाएगा, ऐसे सतूनों के साथ जो बहुत लंबे होंगे, यानी लॉक भी ऐसे नहीं जो कभी खुल सके। आपने देखा है ये जो पुराने जमानों में गेट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल वो लंबे लंबे समझ लें कि डंडे से लगा दिए जाते थे ताकि लॉक ना खुले। फिर नंबर टू, ये खुद उन अमूद के अंदर, उन सुतूनों के अंदर होंगे, वो अंदर से हॉलो होंगे, वो सतून उनके अंदर होंगे और ये लंबे लंबे सतून होंगे। तो ये पर यानी ऐसी जगह होगी जो तंग है, जैसे सूरह फुरकान में है ना कि जब ये जहन्नम में डाले जाएंगे तो ये कन्फाइंड होंगे टाइट जगह में, और वहां पे चीखें मारेंगे और कहेंगे मौत मौत। तो और तीसरी बात ये कि ऐसे होगा कि इनको इन सतूनों के साथ बांधा गया होगा, जैसे किसी को किसी सेल में लॉक कर दिया जाए और उसके अंदर फिर उसको बांधा हुआ जाए, अंदर भी बंधा हुआ। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत शदीद आयात है, उलमा कहते हैं कि यहाँ इससे ज्यादा सख्त डिस्क्रिप्शन नहीं कहीं आई जो जितनी यहाँ पे है, कि ये आग कितनी ज्यादा तकलीफ दे और कितनी इंटेंस होगी और इसके अंदर इनका क्या हाल होगा। तो इसलिए मौका दा फ्लेयर अप होने को भी कहते हैं, फ्लेम अप होना। तो ये ऐसी आग होगी, फ्लेयर अप होकर हो रही, बढ़ रही होगी। अब देखें, इनको बंद कर दिया गया, इन्होंने खुद को दुनिया में बंद नहीं किया था, यानी खुद को दुनिया में रोका नहीं था, इनको अब बंद कर दिया गया। इनकी जुमाने बंद नहीं होती थी, इनको अब यहाँ पे बंद किया गया। शुरू और एंड आयत का सूरत का आप देखें, उसके साथ रब्त देखें, ये खुद को रोकते तो आज यहाँ पे बंद ना होते। इन्होंने हकीर समझा दूसरों को, इन्होंने बेइज्जत किया इसकी वजह से, दूसरों को मजाक उड़ाया, इन्होंने किसी को कोई वैल्यू ही नहीं दी, इनको आज फेंक दिया गया, इसमें डाल नहीं दिया गया, फेंक दिया गया, जैसे ये कुछ नहीं अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ताला ने तो फरमाया कुरान में, वलकद करमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने इकराम इज्जत दी है बनी आदम को, आदम की औलाद को इज्जत दिया, ऑनर दिया अल्लाह ताला ने, तुम उसको ये करते रहे, तो आज इसकी ये सजा है। और फिर माल को जमा करने में लगा रहा, इसी को गिनता रहा, इसी के उधेड़ बुन में रहा, इसी के लिए इसने अपनी जिंदगी गुजार दी। तो आज देखो आग कैसे चढ़ रही है दिल की तरफ इसके, और जिस्म के अंदर से पेनिट्रेट करके दिल तक पहुंचने, इसका मतलब पूरे जिस्म को उसने कैसे जला दिया हुआ, और बंद है आज, भाग नहीं सकते, फरार नहीं हो सकते, ठंडक कहीं से आ नहीं सकती अंदर, अवन की तरह ही समझ लें। तो ये आग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई गई। और फिर आमद मुमद्दा से और पता चलता है कि कैसे सतून होंगे, वो सतून है जहन्नुम के अंदर ही, जो आग के सतून है, स्याह काली आग के, और दरवाजे बंद हैं और ये अंदर है। अल्लाह अकबर। इसी के ऊपर इमाम इब्नुल जौजी का नसीहत आमेज एक कलाम है, वो फरमाते हैं, इंसान जरा अपने आप को जहन्नुम के किसी कोने में तस्वुर करके देख, जहां तू हमेशा रोता ही रहेगा, दरवाजे बंद है और उसकी छतें भी ऊपर से बंद है, और वो स्याह और गुप अंधेरी जगह है। तो वो लोग ऐसे अपने आप को नसीहत करते थे और सीधे रास्ते की तरफ लाते थे। आज सोचा था कि सूरतुल फील भी करेंगे, लेकिन चूंकि अब वक्त नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह तआला हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हम सब अपने आमाल का जायजा लें, दिलों में हमारे क्या है, दिलों में अगर नफरतें हैं, दिलों में लालच है, दिलों में दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कसरत की चाहत, सब दिलों की बातें ना, इसीलिए दिल ही जलाए जा रहे हैं ना। हिर्स है, बुखल है, और दूसरों के बारे में ऐसे ख्यालात हैं, तो इस आग को दिल से निकाल दें। ये आग जब तक दिल में जलती रहेगी, जुबानें काबू में नहीं रहेंगी। जिंदगी सही रास्ते पे नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें इन आमाल से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, और अल्लाह ताला हम से यकीनन गलत कारियां हुई हैं, अल्लाह ताला हमसे सरफे नजर कर दे, अल्लाह ताला हम सबकी कमियों को ताहियों को दूर फरमा दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.